Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayan, 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 Narayan. Ishwar ki bahut badi kripa hai. स्वामी जी ने कृपा करके यहां आकर हमें दर्शन दिए हैं. हम सब मिलकर स्वामी जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं. गत वर्ष आपने श्वेतोष्टर उपनिषद पर प्रवचन किया था. दो अध्याय बाकी रह गए थे. इस वर्ष भी आप उसी उपनिषद पर जो दो अध्याय बाकी रह गए हैं उनको पूरा करेंगे और उनके माध्यम से हमें हमारे जीवन में आत्मबोध कैसे हो, हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकें, इस पर आप हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे. इन शब्दों के साथ मैं प्रेमपुरी आश्रम की ओर से और आप सबकी ओर से स्वामी जी का स्वागत करता हूं.
हरि ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभम् चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. शिवाय नमः. ॐ शिवाय नमः. ॐ शिवाय नमः. ॐ नमः शिवाय. शिवाय नमः. ॐ शिवाय नमः. ॐ नमः शिवाय. शिवाय नमः. ॐ शिवाय नमः. ॐ शिवाय नमः. ॐ नमः शिवाय. शिवाय शिवाय नमः. ॐ नमः शिवाय. हराय नमः. ॐ हराय नमः. ॐ हराय नमः. ॐ नमो हराय. हराय नमः. ॐ हराय. नमः. ॐ नमो हराय. हराय
वर्ष की तरह जून महीना प्रेमपुरी आश्रम आयोजित वेदांत सत्संग के लिए हम देते रहे हैं और इस वर्ष भी उसी क्रम के अंतर्गत वेदांत प्रवचन के लिए उपस्थित हुए हैं। आज विषय प्रवेश करने से पहले कुछ बात कहनी है, वह है कि मनुष्य क्यों वेदांत सुनने में प्रवृत्त होता है। वास्तव में विश्व और विश्व के जो मानव है दो धार में बटे हुए हैं। एक भोगवादी धार है, प्रवाह है, उसी में वह बगे हुए हैं, उसी में बहे हुए हैं, प्रवाहित हैं, और उसी धार के अनुसार वो लोग चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं और नया नया शोध, नया नया अनुसंधान करके वो अपने को, जीवन को सफल मानते हैं। चिंतन की एक दूसरी धार है वो अध्यात्म प्रवाह। ये हमारे भारतीय मनीषियों के आविष्कार है। अध्यात्म चिंतन का जो एक प्रवाह है, एक अपने ढंग की एक नया प्रवाह है, चाहे वह भौतिकवाद हो चाहे अध्यात्मवाद हो, दोनों चिंतन का आरंभ करते हैं। जो वर्तमान में दिख रहा है उस पदार्थ को आधार बनाकर, प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, वर्तमान में जो दिख रहा है उस पदार्थ को, उस वस्तु को आधार बनाकर चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है। भौतिकवाद ये कहता है कि जो दिख रहा है वह हमारे भोग्य कितने उपयोगी है। कोई भी वस्तु दिखे उसको, उस वस्तु के बारे में वो पूरा अपना चिंतन समर्पण करता है और उस चिंतन का एक ही प्रयोजन है कि ये हमारे लिए कितना भोग्य, कितना उपयोगी है, किस दृष्टि से, किस एंगल से, किस विधा से यह हमारे भोग्य हो सकता है। जहर भी उसको मिल जाएगा तो वो भी ये हमारे लिए किस विधि से, किस प्रकार से उपभोग्य होगा। जहर को भी उपभोग्य बनाना चाहता है भौतिकवादी चिंतन। ये अमृत देखता है तो उसको भी किस तरह हम भोगें, उसकी उपयोगिता क्या है। और क्योंकि संसार में ये दो ही पदार्थ महत्वपूर्ण है, या तो अमृत महत्वपूर्ण है या जहर महत्वपूर्ण है। जहां तक भौतिक दृष्टि से विचार किया जाए, सारा संसार के जितने भी पदार्थ हैं इन्हीं दो का समन्वय है, ये दो से सम्मिश्रित हैं। और ये बात ब्रह्म विद्या का आचार्य यमराज ने अपने प्रिय शिष्य नचिकेता को कहा है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्तौ संपरिक्त्य विविनक्ति धीरः। ये नचिकेता, जगत में जितने भी तुम पदार्थ देखते हो, देश काल वस्तु, दो वस्तुओं का मिश्रण है। इस पर देश भी दो वस्तुओं का मिश्रण है, काल भी दो वस्तुओं का मिश्रण है, पदार्थ भी दो वस्तुओं का मिश्रण है। श्रेय और प्रेय, हमारा जीवन भी दो वस्तुओं का मिश्र है, श्रेय और प्रेय। प्रेय पर विचार करने वाला भौतिक विज्ञान है, किस वस्तु को किस प्रकार से उपयोग करने पर हमको प्रिय लगता है, हमको अच्छा लगता है। एक पेड़ को काटकर टुकड़ा टुकड़ा बनाकर जोड़ तोड़कर यदि आराम से बैठने की लायक कुर्सी बनती है तो बनाना हमारा कर्तव्य है। रुई को, कपास को किस तरह से ताना बाना करके यदि वह हमारे लिए बिछाने के लिए दरी, पहनने के लिए कपड़े बनते हैं, संभव है तो वह हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए उसको बनाना जरूरी है, उसके लिए बनाते हैं। भौतिक विज्ञान पूरा का पूरा इसी में, चिंतन में, इसी प्रक्रिया में ही लगा हुआ है। प्रिय पदार्थों को, पदार्थ में विद्यमान जो प्रियता है उसको कितने उपयोगी बनाया जा सके, उसी चिंतन में है। हम लोगों ने पहले गाय पाला था, हमारी धर्म और संस्कृति थी, हम सनातनी हैं, वेद ब्राह्मण गाय और गंगा में, गीता में विश्वास रखने वाले हैं और हमने गाय पाला था, तो इस दृष्टि से कि वो गाय के द्वारा दूध प्राप्त हो, इस दृष्टि से गाय पाला था कि उसके द्वारा हमें गोमूत्र प्राप्त हो, इस दृष्टि से पाला था कि उसके द्वारा हमें गोबर प्राप्त हो, और उस गोबर के द्वारा हम खेत में डालकर अनाज उत्पन्न करें, जमीन को उर्वरा बनाएं, शुद्धि अशुद्धि में पंचगव्य आदि का प्रयोग करें, आत्मशोधन करें, देह शोधन करें, दुग्ध और घृता आदि का सेवन द्वारा हम अपने को पुष्ट संतुष्ट करें, इस उद्देश्य से हमने गाय पाला था। और सृष्टि का विधान भी यही था कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की है गाय की तो शायद यही उद्देश्य से की थी, परंतु आज का भौतिकवादी इससे संतुष्ट हुआ नहीं। उसमें उसने गाय में जो तत्व खोजा दूध, गोबर और गोमूत्र तो गौण हो गया, गोमांस महत्वपूर्ण हो गया। आज अब पूरा का पूरा विश्व, यूरोप, अमेरिका गाय को मांस के लिए ही पालते हैं। किस तरह भोग्य बनाए, दूध से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया गोमांस, को दूध से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया गोमांस, गोबर से जमीन के लिए मल ऊर्जा महत्वपूर्ण था लेकिन अब वो महत्वपूर्ण नहीं रहा, गोबर से गैस बनाने शुरू हो गया। तो ये भौतिक चिंतन हो, भौतिक चिंतन का यही है प्रतिफल कि संसार में जो वस्तु, जो पदार्थ दिख रहा है उसमें जो प्रियता है, क्योंकि इसका सूत्र मैंने कठोपनिषद के आधार पर की है, स्वयं यमराज ने कहा है कि श्रेय और प्रेय दो चीज हर देश, हर काल और हर वस्तु में सन्निहित हैं, रहते हैं। एक धार जो है भौतिक चिंतन, उसमें से जो प्रेय है वो प्रेय को खोजता है, प्रेय को चुनता है। प्रेय अन्य योगक्षेमम वृणोते, तत्काल योगक्षेम को ध्यान में रखता है वो, क्योंकि उनके चिंतन जो जीवन है, मानव अस्तित्व, वह केवल एक जन्म से संबंधित है, एक जन्म के अलावा दूसरे जन्म का चिंतन ही नहीं कर सकते। वह अपने जीवन को एक सीमा तक आयु की मूल्यांकन करता है, मैं ज्यादा से ज्यादा इतने साल बांचूं, और इतने वर्ष तक यदि बांचा जिया जीना है तो उसके लिए इस सारे साधन का जुगाड़ करना बहुत जरूरी है। यही उसकी चिंतन है, एक की जीवन के लिए चिंतन है उसका। इसलिए वर्तमान जीवन जब तक जिंदा है, जिंदा रह सकता है या रहेगा, वो अपने अनुमान करके कहता है कि इतने साल और जीऊंगा, यदि इतना साल जिया तो इस तरह मैं जीऊंगा। तो उसके लिए साधन के रूप में उस पदार्थ देश काल वस्तु में विद्यमान प्रिय को वह चयन करता है और उसी चिंतन में लगा रहता है। लेकिन चिंतन के एक दूसरी जो प्रवाह है, दूसरा धार है, वो जीवन को केवल एक वर्तमान या एक जीवन को आधार नहीं मानता। जीव अनादि अनंत है। जिस तरह ये जन्म है इसी तरह पहले जन्म हुए और इसी तरह और भी जन्म होंगे। इससे पहले के जन्म में अस्तित्व था, मैं था और मैंने किया, उसका प्रतिफल अभी मिल रहा है। जब पहले जन्म में मैं था और मैंने जो किया उसका प्रतिफल अभी मिल रहा है, तो ये जन्म भी मेरा अस्तित्व है वर्तमान में, और यहां भी मैं कुछ न कुछ कर रहा हूं, और यही इसी कर्म का प्रतिफलन दूसरा जन्म में मुझे प्राप्त होना है, होगा। ये दृढ़ निष्ठा, दृढ़ निश्चय, इसको आधार बनाकर उसमें से प्रिय के अपेक्षा श्रेय को वर्णन करता है। इस समय ये जन्म तो जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन इसका जो दूसरा जन्म होगा इसके बाद वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि मैं इस जन्म में जो हूं, जितना हूं, जैसा हूं, अध्यात्मवादी उससे संतुष्ट नहीं होता। और संतुष्ट नहीं होता इसीलिए वह दूसरे जन्म के लिए वो प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और यही है अध्यात्म। लेकिन भौतिकवाद वर्तमान में असंतुष्ट तो है ही है, क्योंकि उसके अलावा दूसरा जन्म वो मानता नहीं। इसलिए दूसरे जन्म के लिए वह कुछ प्रयत्न करता नहीं, परिणाम दूसरा जन्म होता है, ये निश्चय समझना कि हमारे से दूसरा जन्म न मानने से दूसरा जन्म रुकेगा ये बात नहीं है। सूर्य को न मानने से सूर्य का प्रकाश रुक जाएगा ये बात नहीं है। अग्नि को न मानने से वो अग्नि की जो उष्णता है वो रुक जाएगी ये बात नहीं है। अग्नि पर पूरा विश्वास और श्रद्धा करने वाले के सामने अग्नि जिस रूप में प्रकट होती है, विश्वास न करने वाले के सामने भी अग्नि उसी रूप में प्रकट होती है। सूर्य पर श्रद्धा करने वाले के सामने सूर्य जिस प्रकाश को लेकर प्रकट होता है, सूर्य को विश्वास न करने वाले के सामने भी सूर्य उसी प्रकाश को लेकर प्रकट होता है। परंतु पुनर्जन्म को मानने वाला व्यक्ति, क्योंकि वो दूसरा जन्म वो मानता है, इसीलिए वर्तमान जन्म को वो ठीक करने का कोशिश करता है, क्योंकि उसको विश्वास है वर्तमान जन्म का जो कोशिश है, प्रयत्न है, सुधार है, वही दूसरे जन्म का सुधार है। जन्म सुधारने की प्रक्रिया है, इसीलिए वह वर्तमान जन्म में सुधारने की कोशिश करता है। और उसकी जो वर्तमान जन्म की जो सुधार की कोशिश है, वही अध्यात्म की उन्नति का एक सोपान है। प्रति जन्म में वो कोशिश करता है। आप और हम यहां जिस तरह बैठे हैं अभी, ये वर्तमान जन्म के सुधार की जो सोपान है, उसी सोपान के कड़ी के अंतर्गत हम बैठे हैं। क्यों नहीं बैठते सब? क्योंकि जन्म सुधारने का उन्होंने, मुझे लगता है, न पूर्व जन्म में किया होगा, न वर्तमान में किया है। और जो भावी जन्म के बारे में निश्चिंत है, वह वर्तमान जन्म में सुधार की बातें नहीं करता है। परिणाम क्या होता है कि वो दूसरे जन्म और बदतर हो जाता है। आज जितने भी आप देख रहे हो, अध्यात्म दृष्टि के विचार से यदि विचार किया जाए, तो इन्हीं सब कमी का प्रतिफल सामने आ रहा है। तो अध्यात्म ये कहता है कि अल्प दूसरे जन्म के लिए आप अभी से प्रयत्न करो, उसको ध्यान में रखो, तब वह श्रेय मार्ग को चुनता है। प्रेयता को छोड़कर वह उसमें श्रेयता खोजता है। वह श्रेय देश को खोजता है, जिस देश में रहकर मेरा यह जन्म तो दिव्य होवे होवे, दूसरा जन्म भी दिव्य होवे, यदि दूसरा जन्म होगा, क्योंकि वह श्रेयार्थी दूसरे जन्म को मानता है। इसीलिए वो यही सोचता है कि वर्तमान जन्म तो दिव्य होवे होवे, दूसरा जन्म भी और उससे ज्यादा दिव्य होवे। इसी तरह काल में जब तू जीता है, तो श्रेयार्थी वर्तमान समय तो मेरा दिव्य बढ़िया होवे होवे, भविष्य में दूसरे जन्म में जन्मांतर में भी उसमें भी मेरा जीवन दिव्य हो। कोई भी वस्तु उसको मिलता है, वस्तु पकड़ता है, दिखता है उसको, तो उस वस्तु के माध्यम से वो ये चाहता है कि इन वस्तुओं के माध्यम से मैं वर्तमान जन्म में तो संतुष्ट हूं, वर्तमान जन्म में तो मैं संतुष्ट हूं, और इसी के माध्यम से दूसरा जन्म भी मेरा संतुष्टि कारक बने। तब हमने दान की भूमिका बनाई, तब वेद ने दान की महिमा गाई। ये क्यों कहा? क्यों दान की महिमा क्यों वर्णन करना पड़ा वेद को? तुम्हारे पास धन है तो धन के द्वारा वर्तमान तो ठीक होवे होए, लेकिन उस धन को वर्तमान में भोग भाग कर खत्म कर दोगे तो दूसरा क्या होगा? दूसरा जन्म क्या होगा? वो कैसे ठीक होगा? वर्तमान धन से दूसरा जन्म ठीक कैसे होगा? तब कहा कि उस भोग में से कुछ त्याग करो, कुछ दान करो।
तो उससे क्या सिद्ध हुआ? वर्तमान में विद्यमान जो प्रेय के लिए लिया गया धन वस्तु,
वह वर्तमान तो ठीक है ही है, उसमें से प्रतिशत कुछ दान करके हम भविष्य को सुधारना चाहते हैं। तो ये हो गया श्रेय अर्थ।